नमस्कार भारत। आज है 3 सितंबर, दिन मंगलवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। कुलभूषण जाधव मामले में भारत के लिए अब आगे क्या है रास्ता?
कुछ देर के बाद फिर ICJ के पास जा सकता है कि भाई देखिए, आपने कहा भी था, अब साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, वो केस आगे ही नहीं बढ़ा।
पाकिस्तान पहले नहीं करेगा परमाणु बम का इस्तेमाल, इमरान खान ने दिया भरोसा।
अगर ये आगे टेंशन बढ़ती है तो दुनिया को खतरा है, हमारी तरफ से कभी भी पहल नहीं होगी।
असम के चाय बागान में डॉक्टर की पीटकर हत्या के बाद धर पकड़ जारी।
मौत करीब करीब 250-300 के करीब करीब था वो मौत, किसी को भी आने नहीं दिए थे। इनफैक्ट 108 जो एम्बुलेंस गया था उसको भी भगा दिया था।
होंगी और भी खबरें, मगर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, नवीन नेगी से। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कल कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया। भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया ने कुलभूषण जाधव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक प्रेस नोट जारी किया। इस प्रेस नोट में बताया गया कि कुलभूषण जाधव अपने बारे में किए गए झूठे दावों की वजह से बेहद तनाव में हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात की जानकारी जाधव की मां को भी दी है। तालिबान ने BBC से इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते के बाद अफगानिस्तान से लगभग 5,000 अमरीकी सैनिक वापस जाने को तैयार हैं। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी दूत जलमय खलीलजाद ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी से मुलाकात की और उन्हें शांति समझौते का मसौदा दिखाया। राष्ट्रपति के सलाहकार सादिक सिद्दीकी ने कहा कि वो इस बारे में अमरीकी दूत के साथ बातचीत जारी रखेंगे। सादिक सिद्दीकी ने कहा,
He talked about the details of that potential agreement, of framework of that agreement.
उन्होंने राष्ट्रपति को उस समझौते का एक मसौदा दिखाया। उस समझौते पर आने वाले वक्त में हस्ताक्षर होंगे। हम सभी जानकारियां जुटा रहे हैं और राष्ट्रपति भी इस समझौते को अच्छी तरह से परख रहे हैं। ये थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के सलाहकार सादिक सिद्दीकी के शब्द। इस बीच काबुल में हुए एक धमाके में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने और 50 लोगों के घायल होने की खबर है। इस धमाके की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। उत्तरी अमेरिका में स्थित बहामास में डोरियन तूफान ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अटलांटिक समुद्र के तट से जुड़े बहामास में इस तूफान की वजह से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। अटलांटिक में अभी तक का यह दूसरा सबसे खतरनाक तूफान है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस के मुताबिक डोरियन तूफान की वजह से बहामास में 13,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। बहामास के प्रधानमंत्री ह्यूबर्ट मिनिस ने इसे बेहद खतरनाक बताया है और लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में ही रहें। हांगकांग के नेता कैरी लैम ने देश में पैदा हुए राजनीतिक संकट के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यह बात कुछ व्यापारियों के साथ हुई बैठक में स्वीकार की है। इस बैठक की ऑडियो रिकॉर्डिंग रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के पास है। कैरी लैम कह रही हैं कि अगर उनके पास विकल्प होगा तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। इस रिकॉर्डिंग में लैम को रोते हुए सुना जा सकता है। वो बोल रही हैं कि उन्हें लगता है कि चीन का प्रशासन हांगकांग में प्रदर्शन रोकने के लिए शायद सेना ना भेजे। कैरी लैम ने कहा है, मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए हांगकांग में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, यह सब कभी ना भुलाने वाला है। अगर मेरे पास विकल्प होगा तो मैं सबसे पहले अपने पद को छोड़ना पसंद करूंगी। इस सब के लिए मैं माफी चाहती हूँ। ये थे हांगकांग की नेता कैरी लैम के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि वो किसी भी हालत में ब्रसेल्स से ब्रेग्जिट को आगे खिसकाने के लिए नहीं कहेंगे। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कुछ विरोधी कंजर्वेटिव सांसद ब्रेग्जिट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि वो देश में दोबारा चुनाव नहीं चाहते हैं। हालांकि सरकार के सूत्रों ने बताया है कि अगर विरोधी सांसद ब्रेग्जिट को आगे खिसकाने में कामयाब रहे तो सरकार 14 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा कर सकती है, क्योंकि इसके 3 दिन बाद ही यूरोपीय संघ का सम्मेलन होना है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में समुद्र तट के नजदीक एक नाव में आग लगने से कई लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। कोस्ट गार्ड ने बताया कि उन्होंने अभी तक 4 शव बरामद कर लिए हैं, जबकि करीब 30 लोग अभी भी लापता हैं। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। पाकिस्तान में पिछले 3 साल से कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कल पहली बार किसी भारतीय राजनयिक से मिलने दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICJ के 17 जुलाई के फैसले को मानते हुए पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया था। मुलाकात में क्या हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं आई है, पर सवाल उठता है कि इसके आगे क्या होगा। इसकी पड़ताल की बीबीसी संवाददाता भूमिका राय ने।
पाकिस्तान में भारत उच्चायोग के प्रतिनिधि गौरव अहलूवालिया ने सोमवार को पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 2 घंटे से ज्यादा चली। दोनों के बीच क्या बात हुई इसकी विस्तृत जानकारी तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सोमवार को ही देर शाम विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि 17 जुलाई 2019 को कोर्ट के फैसले के अनुरूप पाकिस्तान ने आज कुलभूषण जाधव केस में कॉन्सुलर एक्सेस दी। उन्होंने माना कि वे खुद भी अभी इस मुलाकात की एक विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जाधव पर पाकिस्तान के झूठे दावों की कहानी दोहराने का दबाव साफ नजर आया। जाधव मामले में इसे एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के जानकार इसे लेकर अलग अलग नजरिए रखते हैं। पूर्व भारतीय राजनयिक राजीव डोगरा इसे पाकिस्तान की हार के तौर पर देखते हैं।
एक पहली एग्जांपल बनी है दुनिया के लीगल प्रेसिडेंट्स में जिसमें एक कंट्री को कहा गया है कि आपने सरासर गलती की है हर काउंट पर, तो उसके कारण इनको देना पड़ा कौंसलर एक्सेस मजबूर होके।
वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जाहिद हुसैन इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि भारत को पाकिस्तान के इस कदम की सराहना करनी चाहिए।
ये कहना कि किसी मजबूरी के तहत या प्रेशर के तहत वो नहीं सही होगा, क्योंकि जब आप यानी ICJ की रूलिंग को आप करते हैं तो वो भी एक वॉलंटरी स्टेप होता है। इससे पहले भी जो उनकी फैमिली से भी मुलाकात करवाई गई थी, जिस पे खैर हिंदुस्तान को अपने इतराजात हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो वॉलंटरली था उसमें कोई मजबूरी नहीं थी। और मेरा ख्याल ये कि एक अच्छी बात थी कि बावजूद इसके कि जो है दोनों ममालिक के दरमियान जो है टेंशन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो है उनको काउंसलर एक्सेस दिया, तो हिंदुस्तान को बजाय तंकीद करने के मेरे ख्याल इस चीज को सराहना चाहिए।
लेकिन अब भारत का अगला कदम क्या होगा, इस पर राजीव डोगरा कहते हैं,
भारत के पास यही विकल्प है कि परस्यू करता रहे, अपने जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करता रहे, क्योंकि इसके अलावा तो अब और कोई चारा रह नहीं गया ना। कुछ देर के बाद फिर ICJ के पास जा सकता है कि भाई देखिए आपने कहा भी था, अब साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, वो केस आगे ही नहीं बढ़ा, तो उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। और ICJ भी जो है लीगली बाइंडिंग जरूर होता है, पर लीगली एनफोर्सेबल डिसीजन नहीं हो पाता।
राजीव डोगरा इस मामले को कश्मीर से भी जोड़कर देखते हैं।
शायद ये कौंसलर एक्सेस देते भी ना इतनी जल्दी, पर एक जो चीज इन्होंने कही इनके विदेश मंत्री ने कि हम कश्मीर का मामला ICJ ले जाएंगे, मुझको लगता है कहीं ना कहीं उसके साथ भी इसका कनेक्शन है, क्योंकि अगर कौंसलर एक्सेस दिए बगैर ये ICJ को अप्रोच करते तो पहला सवाल ICJ ये करता कि भाई आप हमारे पास क्यों आए जब आप हमारी कोई बात ही नहीं मानते।
लेकिन जाहिद ऐसी किसी भी बात से इनकार करते हैं।
इस चीज का तो कोई मुझे इतना अंधिया नजर नहीं आता है। देखिए एक बात थी कि जो एक प्रोसीजर होता है इंटरनेशनल लॉ के तहत, वो पाकिस्तान ने पहले ही पूरा किया है। अब अचानक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हो सकती है कि वो जो है वो उनके हवाले कर दे। देखिए यहाँ पे जो उनपे इल्जाम हैं वो बहुत संगीन है, वो सिर्फ जासूसी के इल्जाम नहीं है बल्कि उनपे टेररिज्म के भी है। तो ये कहना कि जो है वो हिंदुस्तान को दे देंगे, मुझे तो नहीं लगता है कि खासतौर पर जो सूरत हाल है तो उसमें तो मुझे कभी नजर नहीं आता है कि पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार होगा कि उनके हवाले किया जाए।
कुलभूषण जाधव की कल किसी पहली बार किसी भारतीय राजनयिक से मिलने पर भूमिका राय की रिपोर्ट। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही एटमी ताकतें हैं, मगर पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। इमरान खान ने कल लाहौर में सिख समुदाय के एक समारोह में ये बात कही। इसमें उन्होंने एक बार फिर कश्मीर के हालात पर चिंता जताई। पूरे ब्यौरे के साथ नवीन नेगी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर में पहली बार हो रहे इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन के लिए अलग अलग देशों से आए सिख लोगों को संबोधित किया। इस इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के अलग अलग देशों से सिख लाहौर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इन सभी सिखों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार करतारपुर और ननकाना साहिब के साथ साथ पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में सिख तीर्थ स्थल जाना चाहने वाले लोगों को सुविधा देने की हर संभव कोशिश करेगी और ऐसा करके वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं।
करतारपुर आपका मदीना है और ननकाना साहब आपका मक्का है, तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि कोई हम ये सोच भी नहीं सकते कि कोई हमें मक्का और मदीना से दूर रखे। कोई भी मुसलमान को कितनी तकलीफ हो कि अगर हमें कोई मक्का और मदीना ना जाने दे, तो इसलिए तो कोई आपके ऊपर फेवर नहीं की, ये हमारा फर्ज था हमारा, हम इंशाल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे।
पर अपनी तकरीर में इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर की चर्चा छेड़ी और कहा कि पाकिस्तान संयम से काम लेगा।
हम दो न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं, अगर ये आगे टेंशन बढ़ती है तो दुनिया को खतरा है इससे। तो मैंने आपके लिए सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से कभी भी कोई किसी तरफ पहल नहीं होगी।
उन्होंने साथ ही कश्मीर के हालात को अमानवीय भी बताया।
27 दिनों से कर्फ्यू लगाए हुए कश्मीर के ऊपर, 80 लाख लोगों को बंद किया हुआ है, ना दवाइयां हैं, बेचारे मरीजों को क्या हो रहा होगा, बच्चों को क्या हो रहा होगा, किसी के अंदर रहम हो वो ये कर सकता है इंसानों से।
उधर पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा अली भुट्टो ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर मामले पर इमरान खान ने गलतियां की हैं।
I think that Imran Khan's delayed speech in Parliament was lack direction. It was a failure.
आसिफा अली भुट्टो कह रही थीं कि इमरान खान का इस विषय पर संसद में देर से भाषण देना एक नाकामी थी, और पाकिस्तानी विदेश मंत्री का कश्मीर जाकर ये कहना कि पाकिस्तान को विश्व समुदाय से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हास्यास्पद था। कश्मीर के हालात पर देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश होना चाहिए। आसिफा भुट्टो ने साथ ही कहा कि मैं वो बात दोहराना चाहती हूँ जो मेरे पिता ने संसद में कही थी कि अगर ये सब हमारी सरकार में हुआ होता तो वो पहली फ्लाइट से यूएई जाते, फिर चीन, रूस और फिर ईरान का दौरा करते, मुस्लिम देशों को एकजुट करते और अपने सहयोगियों से कहते कि वो हमारे साथ खड़े होकर कश्मीर के मानवीय संकट के खिलाफ आवाज उठाएं।
पाकिस्तान की सियासत में छाया कश्मीर का मुद्दा। असम के टियोक चाय बागान में एक वरिष्ठ चिकित्सक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, जिसके बाद पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरी घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस अस्पताल में मजदूरों की भीड़ ने डॉक्टर पर हमला किया था वहां से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही पुलिस थाना है। पुलिस घटनास्थल पर समय से पहुंची लेकिन उसे डॉक्टर को छुड़वाने में काफी वक्त लग गया। जोरहाट से दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
जोरहाट जिले के टियोक चाय बागान में बीते शनिवार से पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब इस चाय बागान में चारों तरफ सन्नाटा है। दरअसल बीते शनिवार को टियोक टी स्टेट के इस अस्पताल में चाय श्रमिकों की भीड़ ने उस डॉक्टर की जान ले ली जिन्होंने 25 साल तक इसी चाय बागान में लोगों का इलाज किया था। 73 साल के डॉक्टर देवेंद्र दत्ता का गुनाह केवल इतना था कि वो आधी अधूरी व्यवस्था के तहत चल रहे अस्पताल में लाए गए एक मजदूर की जान नहीं बचा सके। महिला और पुरुष के लिए कुल 12 बिस्तरों के दो अलग अलग बने वार्ड और डॉक्टर के बैठने के लिए कमरे वाले अस्पताल को सील कर दिया गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान खाली पड़े इस अस्पताल में पहरा दे रहे हैं। डॉक्टर के कमरे की खिड़की और दरवाजे के टूटे हुए शीशे और वहां टंगे पर्दों पर खून के धब्बों का निशान भीड़ की बेरहमी की गवाही दे रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 से महज 500 मीटर दूरी पर मौजूद इस अस्पताल में दिन के करीब 4 बजे एक वरिष्ठ डॉक्टर को मजदूरों ने पीट पीट कर मार डाला, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। घटना वाले दिन अस्पताल के बाहर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि अगर पुलिस चाहती तो डॉक्टर की जान बच सकती थी। पुलिस अस्पताल में हंगामा शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही मौके पर पहुंची थी, लेकिन भीड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। चाय मजदूरों की भीड़ पुलिस के सामने डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से पीट रही थी। जोरहाट जिले के पुलिस अधीक्षक NV चंद्रकांत मानते हैं कि भारी संख्या में जमा हुई भीड़ से निपटने में पुलिस को भी परेशानी हुई थी।
एक्चुअली पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिला था उसके बाद तुरंत गई थी और री इन्फोर्समेंट भी भेजा गया था, बट पुलिस को भी ओवर पावर हुआ है वहाँ पे। जो मॉब था मॉब करीब करीब मैंने बताया 250 के 300 के करीब करीब था वो मॉब, किसी को भी आने नहीं दिए थे। इनफैक्ट 108 जो एम्बुलेंस गया था उसको भी भगा दिया था। और सेम डे उस टाइम NRC भी पब्लिश हुआ था 31 अगस्त को, तो सब जगह जगह पे ड्यूटी दी थी सबको इकट्ठा करके, फिर रीइन्फोर्समेंट भी भेजा गया और फिर ग्रेट डिफिकल्टी उनको वहां से निकाला। 22 लोगों को हमने जेल भेजा है अभी तक।
टियोक चाय बागान में फिलहाल भय और दहशत का माहौल है। इस बागान को चलाने वाली अमलागामेटेड प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने चाय बागान को लॉकआउट कर देने से यहां काम करने वाले करीब 600 मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। इसी चाय बागान में स्थायी नौकरी करने वाले अमीर मिर्दा कहते हैं,
हम लोग को बोला है सर जो दुखी है ना उसको तो सजा मिलना चाहिए, उसको जो भी सजा हो हम लोग को मतलब नहीं है सर। लेकिन हम लोग को जो अभी बागान लॉकआउट हुआ है वो बागान हम लोग को खोलना चाहिए।
डॉक्टर देवेंद्र दत्ता की हत्या के बाद सोशल मीडिया से लेकर प्रदेश में कई जगह लोगों ने अपना विरोध जताया है तथा घटना में शामिल हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की असम इकाई और असम मेडिकल सर्विस एसोसिएशन द्वारा बुलाई गई 24 घंटे की हड़ताल आज से शुरू हो रही है। इस हड़ताल में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डॉक्टर किसी तरह की मदद नहीं करेंगे। दिलीप कुमार शर्मा, BBC, टियोक चाय बागान, असम।
और आइए अब नजर डालते हैं कि आज भारतीय अखबारों में प्रमुख खबरें क्या हैं। दिल्ली से छपे अखबारों के साथ हैं नवीन नेगी। नवीन
जी, अपूर्व जी, आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में कुलभूषण जाधव का जो मामला है उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। सभी अखबारों ने विदेश मंत्रालय की उस बात को प्रमुखता दी है जिसमें बताया गया है कि कुलभूषण जाधव पर गलत बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। अलग अलग सुर्खियों के साथ इसको अखबारों ने छापा है। नवभारत टाइम्स मेरे सामने रखा है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान में कैद जाधव तक पहली बार पहुँचा भारत। इसके साथ ही दो अलग अलग खबरों से जुड़ी तस्वीरें भी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीर है भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की जिसमें वो एयर चीफ मार्शल BS धनोवा के साथ पठानकोट के एयरबेस में MiG-21 पर बैठे हुए दिख रहे हैं। और अभिनंदन ने कल एयर चीफ मार्शल के साथ MiG-21 उड़ाया, इस वजह से ये तस्वीर सभी अखबारों में देखने को मिल रही है। और दूसरी तस्वीर है चंद्रयान 2 की, यह दरअसल ग्राफिक तस्वीरें हैं, अलग अलग अखबारों ने अपने हिसाब से उसको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया है जिसमें बताया यह गया है कि कल दोपहर 1:15 पर चंद्रयान ने एक बेहद अहम पड़ाव पार किया। चंद्रयान 2 का लैंडर जो चांद की सतह पर उतरेगा वह सफलतापूर्वक चंद्रयान से अलग हो गया। इस लैंडर का नाम विक्रम है और बताया गया है कि 7 सितंबर को ये चांद की दक्षिणी ध्रुव पर इसको उतरना है।
मतलब चांद की सतह पर 7 सितंबर को उतरेगा चंद्रयान।
जी, इसके साथ ही एक बेहद अहम खबर है इकोनॉमिक टाइम्स में, ये प्रकाशित हुई है कि देश के 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर गिरकर 2.1% पर आ गई है। ये आंकड़े जो हैं जुलाई महीने के हैं जिसमें कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन जैसे उद्योग जो हैं शामिल हैं। ये जो आंकड़े हैं ये सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं और इसमें बताया गया है कि इन बुनियादी उद्योगों की जो वृद्धि दर है वो लगातार सुस्त पड़ती जा रही है। पिछले साल जुलाई के महीने में यानी जुलाई 2018 में यही वृद्धि दर इन्हीं सब उद्योगों की 7.3% थी जो कि अब गिरकर 2.1 पर आ गई है। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स में हमने देखी है।
शुक्रिया नवीन अखबारों की झलक देने के लिए। और अब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां गरीब बच्चों के स्कूल भेजने को प्रोत्साहित करने, उनकी उपस्थिति बढ़ाने और बच्चों को पोषण युक्त भोजन मुहैया कराने के मकसद से मिड डे मील योजना शुरू की गई। पूरे भारत में शुरू हुई ये योजना और इसे व्यावहारिक और उपयोगी बनाने के लिए समय समय पर बदलाव भी किए गए, लेकिन ये योजना आज भी उतनी कारगर नहीं हो पा रही है जितनी इसे बनाने वालों को उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश में किस हाल में है ये योजना, यही जानने की कोशिश की समीर आत्मज मिश्र ने।
चंदौली के एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की मध्याह्न भोजन के लिए छुट्टी हुई है। भोजन लगभग बनकर तैयार है और बच्चों को परोसा जाना है, बच्चे उसके इंतजार में हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 1,69,000 विद्यालय ऐसे हैं जहां मिड डे मील दिया जाता है और इससे 1,80,00,000 से ज्यादा बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जाता है। सप्ताह के हर दिन बच्चों को क्या खाने में दिया जाएगा इसका बाकायदा मेन्यू तैयार है जिसे हर स्कूल में अनिवार्य रूप से बड़े बड़े अक्षरों में लिखाया जाता है। भोजन बनाने के लिए रसोइये रखे गए हैं जो गैस चूल्हे पर भोजन बनाते हैं, लेकिन आए दिन कभी भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहते हैं, कभी लापरवाही की खबरें आती हैं तो कभी बच्चों के साथ सामाजिक स्तर पर भेदभाव की खबरें। पिछले दिनों संभल में अभिभावकों ने इसलिए हंगामा कर दिया कि बच्चों को खराब खाना मिल रहा है।
तो अब रिक्शा पकड़ लिया, खाने का मिड डे मील का रिक्शा मौजूद है, आज की खिचड़ी कल की आई है, है? और दूध दिन का पानी आ रहा है,
इतना गलत खाना आ रहा है, घटिया लड़की स्कूल में का बच्चा खा खा के हमारे बीमार पड़े, नालियां पक के आ रहे हैं और केले बिल्कुल सड़े हुए।
तो एक हफ्ते पहले मिर्जापुर के एक स्कूल में मिड डे मील के तहत बच्चों को सिर्फ नमक रोटी देकर पौष्टिक आहार की खानापूर्ति की जा रही थी। ये स्थिति तब है जब सरकार हजारों करोड़ रुपए इस योजना पर न सिर्फ खर्च कर रही है बल्कि मॉनिटरिंग के लिए एक प्राधिकरण का भी गठन किया हुआ है। इसके अलावा सोशल ऑडिटिंग की भी व्यवस्था लागू है। इतनी सारी कवायद के बावजूद ये योजना फलीभूत क्यों नहीं हो पा रही है? वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं,
शहरी क्षेत्र में तो मिड डे मील में कुक फूड देने का एक सिस्टम शुरू हुआ, अब छह पात्रों को काम दिया गया, फिर और कुछ लोगों को काम दिया गया। रूरल एरिया में कुक फूड सप्लाई करने का काम लेने के लिए कोई कंपनी आई नहीं, तो रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में ये ग्राम प्रधान और जो रसोईया और प्रधान अध्यापक, इन तीन लोगों के जिम्मेदार हो गया, लाया गया काम ये। और ये जो इसका बजट है ये टेक्निकल उसकी वजह से कई बार जो है वो लेट रिलीज होता है। जो मेन्यू है, मेन्यू तो खैर इनका बहुत अच्छा है, अगर आप देख लें मेन्यू फॉलो हो नहीं पाता है और मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है।
दरअसल गांव में यह व्यवस्था मुख्य रूप से गांव के प्रधान और स्कूल के अध्यापक के विवेक पर चलती है, वहीं शहरी क्षेत्रों में इसकी मॉनिटरिंग अपेक्षाकृत अधिक तत्परता के साथ होती है, इसलिए आमतौर पर शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों से ही ज्यादा आती हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में नए बेसिक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले सतीश द्विवेदी कहते हैं कि मिड डे मील की निगरानी के लिए एक खास दस्ते यानी फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया जा रहा है।
ये टीम मंडल स्तर की होगी और इस टीम को कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं होगी, ये कभी भी शिकायत मिले तो भी और बिना शिकायत के भी सुबह मोटो किसी भी जिले के किसी भी स्कूल पर कभी भी अचानक पहुंच करके वहाँ के मिड डे मील में क्या बना है, कैसे बना है, उनकी क्वालिटी क्या है, इन चीजों की जांच करेंगे, निरीक्षण करेंगे और कहीं पर कोई शिकायत पाई जाएगी तो वो शासन को रिपोर्ट करेंगे। उनकी रिपोर्ट में जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उस अधिकारी के, उस स्तर के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जानकारों का ये भी कहना है कि मिड डे मील का बजट इतना ज्यादा नहीं है कि तय मानकों के अनुसार बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके। दूसरे उसमें भी नीचे से ऊपर तक बचा लेने की आकांक्षा भी इस योजना को फलीभूत नहीं होने दे रही है। मॉनिटरिंग की नई व्यवस्था कितनी कारगर हो पाएगी ये देखना होगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
तीन तलाक के खिलाफ कानून लाने के बाद अब यूनिफॉर्म कोड बिल यानी समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा हो रही है। अब एक संगठन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने मुस्लिम फैमिली लॉ की मांग की है, जिसे वो मौजूदा कानून के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा समान अधिकार देने वाला मानते हैं। इस ड्राफ्ट की जरूरत क्यों है और उसमें क्या है, बता रही हैं BBC संवाददाता कमलेश मठेनी।
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नाम के संगठन ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर मुस्लिम फैमिली लॉ लाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये नया कानून मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देगा। संगठन ने पत्र के साथ मुस्लिम फैमिली लॉ का एक ड्राफ्ट भी भेजा है, जिसमें विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार के अधिकारों का एक खाका दिया गया है। इस कानून की जरूरत को लेकर संगठन की सह संस्थापक जाकिया सोमन ने बताया,
ये बहुत लंबे अरसे से हमारी मांग रही है कि देश में मुस्लिम फैमिली लॉ होना चाहिए। जैसे देश में हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ऐसे लगभग 8-9 कानून है, साथ ही क्रिश्चियन कानून भी है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, डिवोर्स एक्ट है, जो कि पार्लियामेंट ने उसमें सुधार किए, पार्लियामेंट ने बनाया है ये सारे कानून। सिर्फ मुस्लिमों के लिए जो कानून है 1937 का शरिया कानून, जो अंग्रेजों का कानून है, और उस कानून में कभी आज तक पार्लियामेंट ने सुधार नहीं किया है। तो हमने इनको लिखा है लॉ मिनिस्टर को कि तो ये सारी बातों के लिए देश में कुरान आधारित और संविधान के साथ सही उतरे, संवैधानिक के पैमाने पर भी सही उतरे ऐसा मुस्लिम फैमिली लॉ होना चाहिए।
इस ड्राफ्ट में खास तौर पर बहुविवाह और हलाला पर रोक लगाई गई है, साथ ही शादी के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। तलाक की स्थिति में पति और पत्नी दोनों के लिए सिर्फ तलाक के एहसान का तरीका बताया गया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक पत्नी को पति की सहमति के बिना भी तलाक देने का अधिकार है, साथ ही बच्चे की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी पति को सौंपी गई है। ये कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए किस तरह फायदेमंद होगा, इस बारे में जाकिया सोमन कहती हैं।
उस कानून में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि शादी की उम्र 18 और 21 हो, तलाक या प्रोसीजर क्या होना चाहिए, पॉलीगैमी या बहुपत्नीत्व है वो अवैध होना चाहिए, प्रॉपर्टी में महिलाओं का अधिकार है जो कुरानी अधिकार है वो महिला को दिया जाना चाहिए कानून की शक्ल में, कोई कानून ना होने की वजह से हकीकत में, जमीनी हकीकत में ये अधिकार तब्दील नहीं हो पाते।
हालांकि इस नए ड्राफ्ट को लेकर एडवोकेट महमूद प्राचा कुछ अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि इसमें सभी मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स का ध्यान रखा जाना चाहिए था, जो कि नहीं रखा गया है।
मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट वो बहुत सारे हैं, उसमें आपस में थोड़े थोड़े डाइवर्जेंट व्यूज है, वो डाइवर्जेंट व्यूज को भी इन्हें कोहेज करना चाहिए, जो कि इसमें नहीं किया गया। तो बगैर ये एक्सरसाइज एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज रहेगी, क्योंकि अलग अलग एक्शन में अलग अलग मान्यताएं हैं, उनको सबको कोहेज करके ये करना चाहिए।
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के पत्र पर सरकार की ओर से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, हालांकि संगठन का कहना है कि वो इस मांग को आगे बढ़ाता रहेगा।
मुस्लिम फैमिली लॉ की मांग, रिपोर्ट थी कमलेश मठेनी की। और अब खबर क्रिकेट से, जहां भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में 257 रनों के बड़े अंतर से हराकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। जमैका टेस्ट के चौथे दिन 468 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करती हुई वेस्टइंडीज की पूरी टीम 210 रनों पर आउट हो गई। हालांकि पहली पारी के मुकाबले दूसरी पारी में कैरेबियाई टीम ने कुछ संघर्ष जरूर किया। भारतीय गेंदबाजों की तरफ से दूसरी पारी में मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। ईशांत शर्मा के हाथ 2 कामयाबियां लगी, जबकि पहली पारी में 6 विकेट लेकर कहर बरपाने वाले जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में केवल 1 विकेट लिया। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हनुमा विहारी, जिन्होंने पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक जमाया। और अब खेल जगत की अन्य खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं टेनिस के कोर्ट पर, जहां पर यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में आज विमेन सिंगल्स में मुकाबला होगा अमरीकी खिलाड़ी सरीना विलियम्स का चीन की खिलाड़ी वांग चियांग के साथ। तो वहीं ब्रिटेन की खिलाड़ी जोहाना कोंता का मुकाबला होगा यूक्रेनियन खिलाड़ी एलिना स्वितोलिना के खिलाफ। और मेन सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के लिए उतरेंगे रॉजर फेडरर बुल्गारिया के खिलाड़ी ग्रेगर डिमिट्रोफ के खिलाफ। तो वहीं स्वीडिश खिलाड़ी स्टैन वावरिंका का मुकाबला होगा रूस के खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव के खिलाफ। तो वहीं एथलेटिक्स की दुनिया में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट जिनसन जॉनसन ने रविवार को नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बर्लिन में वर्ल्ड चैलेंज इवेंट की 1500 मीटर रेस जॉनसन ने 3:35.24 में पूरी की और रजत पदक जीता, ये नेशनल रिकॉर्ड है। इससे पहले जॉनसन ने पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स में 3:37.62 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। 800 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड भी जॉनसन के नाम है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मुकाबले 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक दोहा में खेले जाने हैं। तो वहीं क्रिकेट की दुनिया में श्रीलंका के कप्तान लसित मलिंगा T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, उनके 74 T20 में 99 विकेट हो गए। मलिंगा ने इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। अफरीदी ने 99 मैच में 98 विकेट लिए थे। 36 साल के मलिंगा ने 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 खेला था। उन्होंने टेस्ट से 2011 और वनडे से इस साल जुलाई में संन्यास लिया था।
और सभा समाप्ति से पहले मुख्य समाचार।
BBC समाचार। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कल कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया। भारत ने कहा कि कुलभूषण जाधव दबाव में हैं। तालिबान ने BBC से इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते के बाद अफगानिस्तान से लगभग 5,000 अमरीकी सैनिक वापस जाने को तैयार हैं। उत्तरी अमरीका में स्थित बहामास में डोरियन तूफान ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अटलांटिक समुद्र के तट से जुड़े बहामास में इस तूफान की वजह से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। हांगकांग की नेता कैरी लैम ने देश में पैदा हुए राजनीतिक संकट के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें वो इस्तीफा देने की बात कह रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि वो किसी भी हालात में ब्रसेल्स से ब्रेग्जिट को आगे खिसकाने के लिए नहीं कहेंगे। अमरीका के लॉस एंजल्स में समुद्र तट के नज़दीक एक नाव में आग लग गई। इस दुर्घटना में अभी तक 4 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि करीब 30 लोग अभी भी लापता हैं। अमेरिका की एंटी डोपिंग एजेंसी USADA ने धावक क्रिश्चियन कोलमैन पर लगे डोपिंग के आरोप हटा लिए हैं। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुन रहे थे नवीन नेगी। ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। तो अब सभी साथियों के साथ अपूर्व कृष्ण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।